Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Rama, Hare Rama.
Rama, Rama, Hare Hare.
Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. This is Jagannath Mandir, Iskan, Bangalore. में आप सबका स्वागत है. आज सायंकाल के सत्संग में तीन चार दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं. भगवान अवतार लेते हैं अपने साथ, अपने ही परिकरों को साथ लाते हैं और उन अपने परिकरों के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देते हैं. भगवान अवतार लेते हैं करुणा करके, अकेले नहीं आते हैं, हमेशा अपने नित्य परिकर भक्त एटर्नल एसोसिएट्स के साथ आते हैं. और उन एटर्नल एसोसिएट जो भगवान के नित्य भक्त हैं, उनके माध्यम से थ्रू देम दुनिया को शिक्षा देते हैं. जैसे अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता पूरी दुनिया के लिए दे दिया कृष्ण ने. अर्जुन और कृष्ण नित्य सखा है. भगवत गीता में भगवान कहते हैं सखा में भक्तोसी में सखा चेति तुम मेरे सखा हो. भगवान किसी को कहे कि मेरे सखा हो ये बड़ी बात है. हम कहे भगवान सखा हो गए तो मैं तेरे को जानता भी नहीं. भगवान कहे कि मैं ये मेरा सखा है ये बहुत बड़ी बात है. भगवान किसी को अपना ले कि आप मेरे हो ये बहुत बड़ी बात है. तो ऐसे 500 वर्ष पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता के इस श्लोक सर्वधर्मान परिचर्य, ये भगवत गीता की समिंग अप है. समिंग अप मतलब लास्ट लाइन है, क्लाइमेक्स है. भगवत गीता की शिक्षा की क्लाइमेक्स क्या है, हाइट क्या है? सर्वधर्मान परिचर्य मामेकम शरणम व्रज, मेरा पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ. इससे पहले कौन सा श्लोक है? मन मना भव मत भक्त. जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री गौर निताय की. एक ये श्लोक है जो भगवत गीता में दो बार आया है, मन मना भव मत भक्तो. 9 का लास्ट है और 18 में सर्वधर्मान परिचर्य से पहले है. लेकिन मन मना इस दुनिया में है कौन जिसका मन भगवान में लगा हो, अथवा मन जिसने भगवान को दे दिया हो. भगवान कहता है मुझे मन दो, लेकिन दिया किसने है? और वो भगवान कहे कि मुझे मिला, ऐसा उदाहरण कोई मिले तो वो भगवान के शब्दों में. जब भगवान उद्धव को मथुरा से ब्रज भेज रहे थे तब कहा गोपियां कैसी है, मन मनस्का मदार्थ त्यक्त जीविका. उन्होंने अपना मन मेरे को दिया है. किसी को भगवान ने मन मना मांगा माना है तो गोपियों को माना है अपने मुख से. जैसे अर्जुन को अपना सखा कहा है, ऐसे भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मेरा मुझे मन देकर सर्व धर्मों को त्याग करने वाले सिर्फ ब्रज की गोपियां हैं. ये भगवत गीता के लास्ट वर्ष का उदाहरण कौन है, एग्जाम्पल कौन है? ब्रज की गोपियां. तो भगवान ने कहा अगर ये मुझे, इफ आई हैव टू टीच दिस टीचिंग, देन दिस टीचिंग ओनली दी गोपीज नो. ये शिक्षा तो केवल गोपियों को मालूम है, लेकिन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है वो इसका उदाहरण है, वो तो राधा रानी. और देना क्या है, कौन मन देता है? जो कृष्ण से प्रेम करता है वो कृष्ण को मन देता है. भगवान से जो प्रेम करता है वो सर्वस्व भगवान को अर्पण करता है. किसी को अर्पण आप कब करते हो? इस दुनिया की परिभाषा क्या है? किसी को सर्व, किसको सब कुछ अर्पण करता है? जिससे हम प्रेम करते हैं, हरे कृष्ण, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सर्वस्व अर्पण करते हैं. तो सब कुछ अपना भगवान को अर्पण गोपियों ने किया. और गोपियों सारों की ब्रजेश्वरी गोपेश्वरी जो है वो श्री राधिका है. तो अब ये शिक्षा देनी है तो वही दे सकती है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. कृष्ण को वापस आया कि मैं उस थ्योरिटिकल तो बता के आया भगवद गीता में कि ऐसे सर्व धर्मान परित्यज्य की शिक्षा है, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं मैंने। और कलयुग के लोग हैं, जब तक दिखेंगे नहीं प्रैक्टिकल, तक थ्योरिटिकल के ऊपर चल नहीं पाएंगे। तो मैं वापस जाऊं तो मैं कैसे सिखा सकता हूं, जिसको आता है उसको ले जाऊं ना साथ। तो राधा रानी जो भगवान से पहले भगवान के आनंद के लिए अलग, भगवान ने अपने से एक और विग्रह बनाया था, एक रूप बनाया था राधा रानी को, उसको अपने में अपने साथ मिला लिया। राधा रानी का रंग स्वीकार किया, राधा रानी का भाव स्वीकार किया श्री कृष्ण ने, और चैतन्य महाप्रभु बन के इस धरती के ऊपर प्रकट हुए। राधा कांति, राधा भाव दोनों को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देने के लिए आए। क्या शिक्षा देने के लिए आए? कृष्ण प्रेम देने के आए। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। तो कृष्ण प्रेम, राधा रानी कृष्ण प्रेम की मालिक है। कृष्ण प्रेम किसके पास है? कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम नहीं है, वो तो राधा रानी का धन है। तो उसी के भाव में आए, तो राधा रानी के भाव में आए, तो राधा रानी की सखियां भी उनके संग में आई, ललिता विशाखा आदि। लेकिन आज ये पुरुष के रूप में आए तो वो भी सब पुरुष रूप में आई हैं सखियां। बहुत सी गोपियों को ये चिंता रहती थी कि भगवान सुबह गैया चराने जाते हैं, पूरा दिन हमको वियोग होता है। सुबह जाते हुए देखती हैं गोपियां पीछे खड़ी होती हैं, आगे यशोदा माँ आदि विदा करने जाती हैं बाहर सिया। तो यशोदा माँ जब विदा करते हैं कृष्ण को जाते देखती हैं तो ऐसे नीचे होती जाती है। जब वो नीचे होती है तो गोपियों को बड़ा अच्छा लगता है कि अब हम ऊपर से देख सकती हैं। तो वो भाव उनको होता है। तो और फिर शाम तक उसी का विचार करती है और इंतजार करती है गाय कब वापस आती है। इसलिए गाय की धूली एक शब्द है, गाय गो धूली। शाम का समय होता है, गाय की धूली उड़ती है तो पता लगता है कृष्ण आ रहा है। गो धूली के समय को इतने महत्व इसलिए है कि गाय की धूली दिखती है तो गाय आए तो पीछे गोपाल होगा। तो आज इस महाप्रभु की लीला में उन गोपियों ने कहा हमें फिर घर से निकलने में मुश्किल था, इस बार हम इसी रूप में पुरुष रूप में जाके महाप्रभु के साथ आलिंगन करके घूमेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो आज वो सब भी आए हैं साथ में। तो गोपियां आई है तो उनकी मंजरियां भी साथ में आई। मंजरी कहते हैं छोटी छोटी उम्र की लड़की, कितनी 8-10 साल की, जो उनकी असिस्ट गोपियों को असिस्ट करती है कृष्ण की सेवा में। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु पुरुष रूप में जब आए श्री कृष्ण राधा का भाव लेकर, तो उनके संग में एक उनका परिकर आया जिसका चर्चा हम कर रहे सनातन गोस्वामी के रूप में। और उस वक्त वो मंत्री होते हुए भी कृष्ण प्रेम तो पहले से था, लेकिन अब उसको प्रकट करने का समय आया। तब राजपाट छोड़ के, मुख्यमंत्री का पद छोड़कर, कैसे छोड़ा? तुच्छवत मंडलपति, मंडलपति, मंडल कहते 5-7 डिस्ट्रिक्ट इकट्ठी होती है उसको कहते हैं मंडल। वो कमिश्नर उसके ऊपर होता है, एक डिप्टी कमिश्नर एक कमिश्नर, तो वो मंडलपति थे वहां के। उसको कैसे छोड़ के आए? तुच्छवत, तुच्छ किसको कहते हैं? तुच्छवत कैसे कहते हैं? स्टूल पास करने के बाद कोई देखना नहीं चाहता है उसको, उसको कहते हैं तुच्छवत। तुच्छवत का एग्जाम्पल कोई पूछे, जस्ट आफ्टर पासिंग स्टूल नोबडी वांट टू सी इट, ड्रेन करो, लेट इट गो डाउन दी ड्रेन, उसको डाउन दी ड्रेन बोलते हैं। ऐसे वो राजपाट को डाउन दी ड्रेन फेंक के आए। और एक पेड़ के नीचे 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे कि पेड़ में आसक्ति न हो जाए कि पेड़ मेरा है ना। महाप्रभु ने सिख निज वैराग विद्या भक्ति योग, ये चेतना महाप्रभु की शिक्षा, निज वैराग विद्या। वैराग का अर्थ क्या है? विशेष राग। एक वैराग का अर्थ है कुछ छोड़ना, एक वैराग का अर्थ है विशेष राग। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो दुनिया अपने आप छूट जाएगी। विशेष राग का मतलब है भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि दुनिया याद ही नहीं आए। वैराग विद्या निज भक्ति योग, चेतना महाप्रभु की शिक्षा है। वैराग विद्या निज भक्ति योग, निज निज का मतलब है अपनी, निज मतलब स्वयं, वंस वंस ओन भक्ति। तो राधा रानी की भक्ति का जो स्वरूप है, ये जो हरे कृष्ण मंत्र हम जपते हैं, इसके लिए हरे कृष्ण मंत्र है राधा रतंत्र। इस मंत्र के द्वारा राधा रानी कृष्ण को अपने वश में रखती, तंत्र उसको कहते हैं जिससे वश में किसी को किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है, ये गोलोक वासियों में गोलोक अधिष्ठात्री राधा रानी का धन है, इसलिए हम इस मंत्र में राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि वो ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता, ये उसकी, ये उसका धन है। तो सनातन गोस्वामी जब ऐसे आकर ब्रजमंडल में रहे और ब्रजमंडल को दोबारा सब लीला स्थलियों का महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश देकर कहा था कि तीन चार काम करने हैं ब्रज में, तो उसके अंतर्गत महाप्रभु से पहले शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। एक प्रश्न के ऊपर चर्चा चल रही थी, पहला उन्होंने पूछा कि दुनिया कहती है कि मैं मंत्री हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है मैं कौन हूं। दूसरा, इस दुनिया के अंदर हम दुख क्यों भोगते हैं? कोई दुख नहीं भोगना चाहता है, लेकिन सबको जबरदस्ती दुख क्यों भोगना पड़ता है? तीसरा पूछा कि जिंदगी का आखिर लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, गोल क्या है, और उस गोल को अचीव कैसे किया जाए? ये चार प्रश्न सनातन गोस्वामी के हैं, और ये चार प्रश्न हमारे सबके होने चाहिए। मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में दुखी क्यों हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है? ये चार, दीज फोर क्वेश्चंस आर फॉर एवरीबडी। तो पहले क्वेश्चन का महाप्रभु ने उत्तर दिया, जितने भी जीव हैं, जीव मतलब जीवात्मा, शरीर की बात नहीं है, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, जीव आत्मा जितने भी है, वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है? स्वरूप का मतलब क्या? स्वयं का रूप, असली पहचान। जैसे हमारा ये स्वरूप नहीं है जो हमारी शक्ल है, क्योंकि ये बदल जाती है, स्वरूप कभी बदलता नहीं, स्वरूप नहीं बदलेगा, ये शक्ल बदल जाएगी, ये शक्ल काल के गाल में चली जाती है। काल के गाल में चली जाने का मतलब समय इसके ऊपर अपना प्रभाव डालता है, बचपन से बुढ़ापा आता है, कोई नहीं चाहता है बूढ़ा होना, लेकिन सबको होना पड़ता है, लेकिन आत्मा बूढ़ा नहीं होता। इसके लिए आत्मा के स्तर पर रहने वाले बूढ़े अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते, ऐसे बूढ़े मानते तो 70 साल में प्रभुपाद क्यों अमेरिका जाने का हिम्मत करते, क्योंकि वो आत्मा के स्तर के ऊपर जीते हैं, ब्रह्मभूता स्तर इसको कहते हैं। शरीर बूढ़े होने से आदमी बूढ़ा नहीं होता, जो आत्मा के स्तर पर ऊपर होता है वो बूढ़ा नहीं होता। वो 76-78 की उम्र में वो इतने तेज जाते थे कि पीछे चलने वाले 18-20 साल वाले उसके बाद सांस में हाँफ से जाते थे, वो कहते हम उसको पहुंच नहीं पाते। वो अमृतसर में एक बार 10 जगहों पर प्रभुपाद प्रोग्राम करने गए, जो साथ में भक्त थे वो कोई 2 में गया, कोई 3 में गया, बोला ये प्रभुपाद 10 जगह में सत्संग करके आए, हम 3 तक नहीं पहुंच पाए। शरीर बूढ़ा नहीं है, शरीर के बूढ़े होने से आत्मा बूढ़ा नहीं होता है। और ये शिक्षा जितनी है ये आत्मा के स्तर के ऊपर है, थकावट भी नहीं होगी उसको, टायरनेस शरीर को होती है, आत्मा को थोड़ी होती है। ये जड़ भर्त की शिक्षा है भागवत में, बूढ़ा मोटा छोटा पतला ये शरीर है, मैं थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं। राजा जिस मिट्टी का राजा बना है उसी मिट्टी का तो नौकर बना हुआ है, तो अंतर क्या है दोनों में? एनालिसिस दोनों का केमिकल करा तो कोई उसमें अंतर आएगा ब्रेन में? कुछ भी नहीं आएगा। ये तो मान्यता है कि एक राजा मान के अपने को बैठा है, दूसरा नौकर मान के बैठा है, जड़ भर्त कहता है। ये तो मूर्खता की पहचान है जो थोड़ी देर के लिए, कभी वो होता है कभी वो होता है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, मतलब हमारा असली पहचान क्या है, हम असल में क्या है? असल स्वरूप का मतलब उस स्थिति में हम क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप ही ये है, उसकी असली पहचान ही ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। नित्य दास का मतलब यह कि कभी चेंज नहीं होगी ये पोजीशन, कभी चेंज होने वाली नहीं है, नित्य दास है। तो दुख क्यों आता है? बोला मालिक को भूलेगा, मालिक की नौकरी छोड़ेगा तो दर दर का धक्का खाएगा, ये दुख का कारण है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया निकट ता झापटिया धरे। जिसके दास हैं, जो मालिक कहता है मैं तेरा देखभाल करूंगा, माता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता मा, कहता है मैं तेरा माता हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा भरण पोषण करूंगा, मैं तेरी देखभाल करूंगा, उसको छोड़कर हम कहते नहीं, हम अपनी मर्जी से कुछ खाना कमाना चाहते हैं, तो दुख हमको आता है। तो दुख क्यों आता है? कृष्ण बेमुख हुए जीव जब भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं तो माया की गोद में गिरते हैं, और माया हमको देती दुख है, लेकिन कभी बहुत ज्यादा दुख देके फिर दुख को कम करती है, उसको हम सुख कह देते हैं। पहले दुख देती है 100 डिग्री के ऊपर तपा के, फिर 50 पे लाएगी, अरे बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बस है दुख दोनों। तो दुख क्यों आता है? भगवान को भूलने से दुख आता है। कृष्ण भूलिया, कृष्ण बाहर मुख जीव, तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान की तरफ मुंह कर लो, सुख मिल जाएगा। सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, संतों की वाणी है। राम का मतलब है आनंद, राम का अर्थ है आनंद। आनंद चाहिए तो राम के शरण में जाओ, जिसके पास जो चीज होगी वो देगा ना। कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, उसके पास जाओगे तो प्रेम मिलेगा। आनंद घन है भगवान, जाओगे तो उसके पास आनंद मिलेगा। भगवान ने मर्यादा बना रखी है। कैसी मर्यादा है? पेड़ कहता है मेरे नीचे आकर बैठो, तेरे को छाया दूंगा। आप पेड़ से दूर खड़े हो गए, कहो पेड़ इधर आओ, छाया दो, नहीं आएगा। आएगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। ऐसे भगवान ने मर्यादा बनाया, मेरे पास आके जो हाथ जोड़ के कहता है मैं तेरा हूं, एक बार भी कह देता है सुकृत, एक बार अहम त्वाम, मैं तुम्हारा हूं, परपना मैं आपका हूं। भगवान श्री राम का ये वचन है, उसकी मैं रक्षा करता हूं, इदम में व्रत, ये मेरा व्रत है, ये मैंने व्रत लिया हुआ है। दिस इज माय वो, ये मेरा वो है कि एक बार कह दे कि मैं तेरा हूं। ये विभीषण को कहा था, आकाश में विभीषण खड़ा है, नीचे नहीं उतरा, ऊपर से कहता राम मैं आ रहा आपका हूं। राम जी ने सिर्फ देखा चारों ओर, सुग्रीव ने बोला रावण का भाई है, नहीं, अंगद बोला पहले इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, हनुमान ने कहा मैं जानता हूं अच्छा है, इसने और इसकी बेटी ने सीता की सहायता की और मेरी भी सहायता की है राम के वहां, इसलिए शरण में लेना चाहिए। राम जी ने कहा सुग्रीव आप गलत हो, कहिए रावण का भाई है इसलिए शरण में नहीं लेना चाहिए, और अंगद आप कहते हो परीक्षा लेते हो ये भी ठीक नहीं, और हनुमान आपका आधा गलत है ये अच्छा है इसलिए शरण में ले लो, ये भी ठीक नहीं है। इसने कह दिया है तो ये मेरे शरण में, और आओ लंकेश, ऐसे कह के बुलाया, लड़ाई तिलक दे दिया। जैसे ही विभीषण शरण में आया, राम जी ने कहा लंकेश। सुग्रीव कहता आपने इसको लंकेश कह दिया, मतलब लंका का राजा, कल रावण आके आपका शरण लेगा तो क्या दोगे? बोला अयोध्या का राज है ना, उसको दे दूंगा, आएगा तो, अभी मेरा अयोध्या का राज तो पड़ा है ना। इसलिए भगवान कहते हैं श्री कृष्ण एक जगह कि उद्धव जितना मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता हूं, बलराम से इतना नहीं करता हूं, लक्ष्मी से इतना नहीं करता हूं जितना मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूं। ये भक्तों से मैं कितना प्रेम, इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल है। तो मैं इतना प्रेम करता हूं तो उसको क्यों हम छोड़ते क्यों हैं? केवल माया के कारण। माया का मतलब हमारे आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ जाती है, हमारा ऐसा चश्मा चढ़ता है अच्छा हमको काला रंग दिखने लगता है, जो हमारी भलाई करता है वो हमको अच्छा नहीं लगता है, एक प्रकार का हमारे को रोग लग जाता है, इसको बोलते हैं एक रोग है, इसको रोग को क्या कहे, माया मद, माया का नशा है। नशे में आदमी नहीं पहचानता है कि मेरे भलाई किसमें है और मेरा हित किसमें, नशे वाला आदमी नहीं जानता है। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी एंड व्हाट इज वेरी डेंजरस फॉर मी। इतनी बुद्धि होती तो डेंजरस नशा करता ही क्यों? तो दुख का कारण भगवान श्री कृष्ण को भूलना है। गोल क्या है? फिर एक दो बातें और भी महाप्रभु ने कही है, जो दो चार दिन पहले हमने कही थी, हम रिपीट करते हैं कि क्योंकि लोग कृष्ण को भूल जाते हैं, इसलिए कृष्ण ने कृपा करके इस संसार में वेद, प्राण और संत को भेजा है। कृष्ण ने हम लोगों को वापस अपनी ओर खींचने के लिए वेद, पुराण और साधु संत भेजे हैं। स्वयं कृष्ण व्यासदेव बन के आए और वेद और पुराण दिए। कृष्ण अंदर से आइए, हरि हरि बाबू, बड़ा कुर्सी दीजिए बेटा, उनको आसन दीजिए, ये हमारे मथुरा के हैं, मथुरा वालों को भगवान को बहुत प्यारे हैं, ब्रज मंडल वाले। हरे कृष्ण। तो बात क्या कर रहे थे? साधु पुराण वेद पुराण देने के लिए वेद व्यास भगवान का अवतार आया। फिर भगवान ने सबके हृदय में परमात्मा के रूप में खुद बैठ गए आकर। इसको बोलते हैं अज्ञात मित्र, वेद की भाषा में। हम सबकी दिल में भगवान हमारे मित्र हैं, लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं, इसलिए उसको कहते हैं अज्ञात मित्र, अनजान। हम अनजान है, वो हमको जानता है, हम नहीं जानते, उसको मित्र माना है। या ये कहां आता है शब्द? ये चौथे स्कंद श्रीमद् भागवत में आता है, पुरंजन की कहानी में, कि पुरंजन के साथ उसका अज्ञात मित्र परमात्मा के रूप में आया है। अज्ञात मित्र, अननोन वेल विशर फ्रेंड। तो एक तो भगवान हमारे अंदर आके बैठे हुए हैं, तो ये शरीर भगवान का मंदिर हो गया ना, इसके अंदर भगवान बैठे, तो ये भगवान का मंदिर हो गया ना। इस मंदिर में हम आते हैं तो भी हाथ पांव धो के आते हैं, चप्पल बाहर छोड़ के आते हैं, विचार करते हैं कि ठीक ठाक हो, ये मंदिर भी हमने बनाया, ये ठाकुर जी भी हमने स्थापित किए, लेकिन ये तो असली ठाकुर जी अपने आप वो आके बैठे हैं अंदर के नहीं, ये मंदिर भी तो भगवान ने ही बनाया ना, इसके अंदर हम सब कचरा डालते रहते हैं, जो आए वो अंदर डालने का प्रयास करते हैं, इसमें सफाई रखने की जरूरत नहीं समझते। कितना दुर्भाग्य है कि इसमें भगवान बैठा है, भगवान फिर चिल्ला के कह रहा है अहम वैश्वान रो भूतवा, सिर्फ इधर दिल में नहीं बैठा हूं, के अंदर पेट में तेरी रोटी हजम करता हूं, तुम डालते हो, जो खाते हो मैं बैठ के हजम करता हूं, घर में तो मां पका के दे देती है, खाते हो, अंदर कौन पकाता है? आपने अंदर चावल दाल डाल दिया, लेकिन चावल दाल तो कभी आपने देखा नहीं है बाहर निकलते हुए, तो अंदर का सारा कारखाना कौन चला रहा है? हर एक चीज अपनी जगह में कौन पहुंचा रहा है? कितना परफेक्ट सफाई का अंदर काम चल रहा है, कौन कर? बोलते मैं कर रहा हूं और पका रहा हूं, अग्नि वैश्वान और अग्नि के रूप में, जठरा अग्नि के रूप में मैं अंदर बैठा हूं, अब जो खाते हो उसको पकाता हूं। और फिर भगवान कहते मैं तो पकाना शुरू करता हूं, आपने दाल रोटी चावल खाया, मैंने पकाना शुरू किया, आग मैंने जलाई और तुमने फिर ऊपर आइसक्रीम खाई, मेरी आग बुझ गई, अब मैं क्या करूं, मेरे को चिंता में डाल दिया, आग को थोड़ा तेज किया, जो अभी आइसक्रीम को थोड़ा गर्म किया, तब तो मूंगफली ऊपर से खाई, अब आधा कच्चा आधा पक्का, फिर मेरे को कितनी परेशानी तुम देते हो रोज सुबह से शाम तक, जहां आए वहां तुम बकरी की तरह चढ़ते रहते हो। ब्रह्मा जी ने जब इंसान बनाया तो पशु एनिमल भी बनाए, तो एनिमल चिल्लाने लगे कि ब्रह्मा जी भूख लगी है, क्या करें, वी आर हंग्री। ब्रह्मा जी ने बोले जो मिले जहां मिले खाओ। फिर आदमी ने कहा बाबा हमको भी भूख लगी, बोला सुबह खाओ शाम खाओ, नेम से चलो। कुछ दिन नेम से चल के फिर एक दिन एक आदमी का लीडर बना बड़ा, उसने बोला हम क्या एनिमल से कम है क्या, हम दो टाइम खाए क्या, हम एनिमल से कम है, बाबा ने उसको सब जगह जहां आए तब खाने को कहा कि हम नहीं खा सकते, आज के बाद जहां ठेले के ऊपर खड़े होके हम गोलगप्पा भी खा लेंगे, आलू टिक्किया उधर खा लेंगे, मूंगफली वहां खा लेंगे, एनिमल से हम कम थोड़ी। ब्रह्मा जी पक्षपात करते, केवल एनिमल को जहां खाने का इजाजत दे दिया, तब से हमने खड़े खड़े खाने को एनिमल बोलते हैं असल में। सिर्फ खड़े लेने का अधिकार है चरणामृत को, बस सिर्फ भगवान का चरणामृत खड़े लेना है, बाकी कोई चीज खड़े खाने वाले को एनिमल कहा जाता है। फिर टू लेग हो फोर लेग हो इसका नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सच बात करें, झूठ नहीं करें। बैठ कर नहीं खा सकते एनिमल, और खड़ा होकर ह्यूमन को खाना नहीं चाहिए। ये नेम है। पानी भी बैठ के पुराने जमाने पीते थे, खड़े खड़े नहीं पीते। तो भगवान अंदर बैठ के सारा पकाने का काम कर रहा है। तो इतना साध, इतना बड़ा दयालु है, उसको भूल क्यों रहे हैं हमसे, हम उनको भूलते क्यों हैं? इसलिए साधन, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो जिसने हमको सब कुछ इस दुनिया में ये शरीर दिया, और इस शरीर के साथ इसके जीने के लिए जिसने सब सुविधाओं का प्रबंध करके रखा है, उसको हम क्यों भूले? ये कॉमन सेंस की बात है, जस्ट कॉमन सेंस एंड जेंटलमैन की बात है। जो हमारी जरूरत की हर चीज का प्रबंध करता है, उसको थैंक यू कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? उसको याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो क्या इस दुनिया में ऐसी क्या चीज है? पहले आप अपनी शक्ल को देखो, कितनी सुंदर बनाई है उसने, ऐसी डिजाइन उसने बनाई है। दो आंखें, आंखों के नीचे नाक, नाक के नीचे मुंह रख दिया। भोजन आए तो आंख से देख लो कि मक्खी तो नहीं है, नाक से सूंघ लो कि थोड़ा कलवाला तो नहीं है, फिर खाओ। अगर आंख इधर होती तो थाली उल्टी करके देखना पड़ता है। नहीं, हरे कृष्ण, अब विचार करके देख लो ना, और नाक कहीं ना पीछे लगा होता तो कितनी परेशानी होती। इतना कितना सुंदर मॉडल बना है इसकी, कभी सोचा है इसके ऊपर? तो इतनी डिजाइन सुंदर जिसने बनाई है। यहां तो अच्छे मॉडल की गाड़ी आती है, उस गाड़ी का भी बड़ी प्रशंसा होती है। इतना अच्छा मॉडल का इतना आदमी बनाया, उसको याद भी कोई नहीं करता है। कितना सुंदर बनाया हमको, देखा है? किरोड़ों की काया दी है, महलों किरोड़न जी काया रही, महलन में वास नहीं, महलों में रहने की जगह दिया। कोई एनिमल आज तक घर बना के नहीं रह सका है? रह सका है? नहीं रह सकता है। इतना सारा सुख, इतना सारा बुद्धि दिया है, तो देने वाले को याद नहीं करना चाहिए? नहीं याद करते हैं। क्यों नहीं याद करते हैं? इसका क्या कारण है? क्यों भगवान को हम भूल जाते हैं? हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का? जिस जो सब कुछ हमको दे रहा है, उसी को पाना हमारा लक्ष्य है। क्योंकि वो जो दे रहा है, उसके पास तो इससे ज्यादा अनंत होगा ना, तो वहां कभी हमको कमी नहीं पड़ेगी। हम तो जहां जहां वहां भागते हैं, जहां से एक दिन लेते हैं दोबारा दूसरे दिन फिर मांगना पड़ता है। उसी के शरण में जाना चाहिए जो अनादि काल से सबकी इच्छा पूर्ण करता आ रहा है। हम कई बार यही बात करते हैं और फिर कहते हैं, लोगों को रियलाइज नहीं होता है। सांस लेने के लिए हवा सबको मुफ्त में दी हुई है, उसके लिए एक रुपये का किसी को खर्चा नहीं करना पड़ता है। सबसे कॉस्टली कमोडिटी सबसे फ्री में अवेलेबल है, और साहूकार को भी वैसी अवेलेबल है, और गरीब को भी ऐसी है। इतना इम्पार्शल है और इतना कम्युनिस्ट है, एक्सट्रीम स्पिरिचुअल कम्युनिस्ट है। सबके लिए उपलब्ध है, बरसात का पानी सबके लिए बराबर गिरता है, वैसा मीठा, खारे को मीठा बना के ऊपर से गिराता है। इनके ऊपर कभी ध्यान करना चाहिए? तुम सो जाते हो, दिल की धड़कन को चलाता रहता है, बंद हो जाए तो काम सब बंद हो जाएगा। आप आराम करते हो, भगवान आराम नहीं करता है। आप सो जाओ, दिल को चलाता रहता है, फीफड़े को चलाता रहता है, सांस चलता रहता है। हम सो जाएं तब भी हमारे लिए जो जाग रहा है, तब जब हम जागते हैं तब उसको याद नहीं करना चाहिए? तो ये तस्वीर कॉमन सेंस की बात है। जो इतना नहीं कर सकता है तो उसको क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? वो दुख नहीं भोगेगा तो और क्या करेगा? तो इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? महाप्रभु कहते हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, लक्ष्य है कृष्ण प्राप्य, जो कृष्ण की प्राप्ति है ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा गोल क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण प्राप्ति, ये हमारा गोल होना चाहिए। उसके लिए तीन शब्द लिखे हैं। पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको कहते हैं संबंध। कृष्ण के विषय में भगवत गीता भागवत से श्रवण करना और कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण के विषय में ज्ञान को कहते हैं संबंध। कृष्ण प्राप्य संबंध, इसको ऐसे समझना चाहिए। एक शब्द संबंध आपकी भाषा में चलता है, जब लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं उसका पहले जानकारी पता करते हैं, लड़का कमाता है, कहां रहता है, कैसा है, और जब वो उसको पसंद करते हैं तो उस परिवार को क्या कहते हैं? ये हमारे संबंधी है, कहते हैं ना संबंधी है। तो हमारा संबंध उनके साथ स्थापित हुआ, जान पहचान के फिर किया ना। तो ऐसे जब हम भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी महिमा, उनके उनके प्रेम के विषय में सुनेंगे तो हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा। संबंध के बाद दूसरा शब्द है भक्ति प्राप्तेर साधन। तो हमारा गोल क्या है? भगवान श्री कृष्ण प्राप्त कैसे होगा? भक्ति प्राप्तेर साधन, उसकी प्राप्ति का साधन है भक्ति। भक्ति में यहां भक्ति की, भक्ति का अर्थ है सेवा। भगवान की प्राप्ति का साधन है उनकी सेवा। अब दूसरा स्टेज ऐसे आ गया, पहले लड़की और लड़के की सगाई की तो संबंध हो गया, जानकारी करके सगाई कर ली। आत्मा को समझ लीजिए, आत्मा लड़की है और भगवान श्री कृष्ण उसके लिए हमने चुना है, तो ये संबंध हो गया। अब दूसरा स्टेज क्या होता है सगाई के बाद? शादी। तो संबंध में सेवा नहीं होती है, लड़का अपने घर में, लड़की अपने घर में, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानकारी हो गई। लेकिन शादी के बाद सेवा शुरू होती। तो भक्ति का मतलब है संबंध स्थापित करने के बाद भगवान की सेवा में लगना है, भगवान की सेवा में लगना है। वो सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए तीसरा शब्द आगे करें, इनका इनका ट्रांसलेशन सुन लीजिए। वैदिक लिटरेचर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिविंग एंटिटीज एटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा विच इज कॉल्ड संबंध। भगवान से हमारा नित्य एक रिश्ता है, उसको संबंध कहते हैं। वो कैसे पता लगेगा? शास्त्र से। दूसरा है The living entity's understanding of his relationship and his acting accordingly. पहले हमारा संबंध और फिर वैसे ही काम करना, सेवा में लगना, that is called अभिधेय। अब तीसरा शब्द है returning home back to Godhead is the ultimate goal of the life and is called प्रयोजन। भगवान की सेवा क्यों करेंगे? वापस भगवान के धाम जाने के लिए, उसको प्रयोजन कहते हैं। अब आगे कहते हैं महाप्रभु, अभिधेय नाम भक्ति। अभिधेय का मतलब है भक्ति, मतलब सेवा, एक्टिव सेवा। ये सेवा हम कैसे करेंगे? इसलिए ठाकुर जी को विराजमान करते हैं मंदिर में, भगवान को, श्री विग्रह को उस रूप में यहां बुलाते हैं, क्योंकि हम सेवा कर सकें। सेवा करने के लिए ये मंदिर में स्थापना की गई है। सेवा करने का मतलब सेवा क्या होती है? शादी करके आता है तो लड़की क्या सेवा करेगी? भोजन बनाएगी, कपड़े बनाएगी, हर एक प्रकार से सेवा करेगी। तो ये ठाकुर जी को वैसे सेवा के लिए यहाँ स्थापन करते हैं, ताकि यहाँ हम एक रिहर्सल कर रहे हैं, सेवा करेंगे भगवान की कर रहे हैं, तो नित्य हमारा वो सेवा का भाव आगे जाके पक्का होता जाएगा। तो सेवा भक्ति का अर्थ है सेवा। तो इसका मतलब हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं भगवान की सेवा मांगने के लिए, तो सेवा में लगना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ इसे ऐसे समझना चाहिए कि हम जो भक्त यहां मंदिर में आते हैं, तो जब आए तो ऐसा अवसर ढूंढना चाहिए कि हम कुछ सेवा कर सकें। कैसे? जो पहले सेवा कर रहे हैं, मानो आप देखो अचानक एक लड़का एक झाड़ू लगा रहा है, मंदिर की सफाई कर रहा है, तो उसको कहो भाई मुझे बताओ कैसे सेवा करनी है, थोड़ा सा मैं कहा इतना झाड़ू निकालू, तो वो खड़े होकर कहेंगे यहां से सफाई कर लो। तो जो पहले सेवा में लगे हुए हैं उनसे पूछो कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इस सेवा में। जब ये मन में भाव आए तब समझ लो कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर में आ तो रहे हैं लेकिन आने के बाद आपके मन में ये इच्छा हो कि ये सब्जी कट रही है या भगवान को भोग लगेगा, भक्तों का प्रसाद बन रहा है, मैं कुछ सब्जी को धोने में मदद करूं, काटने में मदद करूं, ये सेवा का भाव आ गया। ऐसे जब आने वाले के मन में इच्छा होती है तब समझ लो कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तब भगवान ने हमारी सेवा को स्वीकार किया। कोई भक्त बाहर खड़े होकर कहे कि आप चप्पल यहां रखते हैं, मैं आपको नंबर देता हूं, वापस आओगे सुरक्षित आपके चप्पल मिलेंगे, सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। भगवान श्री कृष्ण ने यह सेवा ली थी राजसूय यज्ञ में सिर्फ ये दिखाने के लिए, आगे मेरे मंदिर में कोई बड़े से बड़ा भक्त होगा बाहर खड़े होकर आने वाले भक्तों के जूतों को देखेगा। दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी मंदिर में आने वालों को क्या है, उनके जूतों की सुरक्षा। अगर जूता कीमती है तो भगवान की तरफ देखे कहेगा तुम्हें एवं माता, फिर जूता याद आएगा, फिर पीछे देखे बोलेगा तुम्हें एवं पिता, माता भगवान पिता जूता याद आएगा, भगवान के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए बाहर सुरक्षित ये सेवा कोई कर सकता है तो लोग थोड़ी देर बैठेंगे निश्चिंत हो गए, नहीं तो कथा से ज्यादा जूते में ध्यान जाएगा। लेकिन ये सेवा करने के लिए तैयार कौन होता है? कुछ ऐसे हमने देखे हैं संतों की शिक्षा दी हुई कि वहां जूता आपका केवल संभालते नहीं है, वापस जाते हो पॉलिश करके रख देते हैं, करते हैं लोग ऐसे मंदिरों में, ऐसा व्यवस्थाएं देकर रखी हुई है। अब जो आपका जूता संभाले और पॉलिश कर दे वहां आपकी आने की दिल दोबारा करेगी कि नहीं करेगी? तो ये इसका मतलब उसकी सेवा से आपको भगवान के पास दर्शन करने का इच्छा ज्यादा होगी ना, तो वो आपके लिए भगवान का मिलाने वाला हो गया कि नहीं हो गया? बात छोटी सेवा नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन इसके करने के लिए तैयार हो जाए, किसी के मन में ये भाव आ जाए, ये आना बहुत जरूरी है। लोग ज्यादा इसलिए नहीं आते हैं कि लोगों की पार्किंग की समस्या और जूतों की पार्किंग की समस्या है, गाड़ी की पार्किंग और जूतों की पार्किंग, ये दो बड़ी समस्या है। प्राइम लोकेशन मंदिर के अंदर जूतों के रखने की रखते हैं बाहर, जहां दुकान अगर खोले कोई तो लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन जूतों के लिए वही जगह देते हैं, क्योंकि लोगों का माइंड व्यूज या तो भगवान में लगे या व्यूज शूज, दोनों साथ चलते हैं, व्यूज एंड शूज। तो ये भी एक सेवा है, इस किसी को उदारता के साथ करने का सोचना चाहिए। ऐसे सेवा करने से आप अटेंडेंस बढ़ जाएगी अपने आप। भोजन खिलाने की सेवा करना उदारता, मां जैसे भाव से और प्रेम से खिलाना चाहिए। और सबसे मुश्किल सेवा है, सब खा के चले जाते हैं बर्तन धोने की, और स्थान को साफ करने की जहां सबने खाया है, कोई रुक के ये काम करता है, इसका मतलब वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। अपने हृदय से आए, कहने से सेवा करना कोई बात नहीं, पैसा देके सेवा किसी से भी कराई जाती बड़ी बात नहीं, लेकिन हृदय में ये भाव आना चाहिए सेवा करने। तो ये सेवा में लगने से भगवान से प्रेम होगा, जिसकी सेवा करेंगे उसी से प्रेम होगा ना। तो सेवा में लगना उसको भक्ति कहते, प्रेम नाम प्रयोजन। और हमारा ये सेवा करने का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विस, कि कृष्ण में प्रेम हो। ये कौन देगा? ये कृष्ण देगा प्रेम, वो जब देखेगा कि हम सेवा कर रहे हैं तो वो प्रेम देगा। जैसे घर में भी जब स्त्री अपने पति की सेवा करती है तब प्रेम मिलता है, और प्रेम के रूप में फिर पुत्र संतान होता है, फिर पूरा परिवार। तो वो जब भगवान प्रेम देगा तो बहुत से बार और भक्त बनेंगे। तो प्रेम सेवा से प्रेम की उत्पत्ति होगी, और सेवा भी जितनी छोटी सेवा करेंगे उतनी भगवान को जल्दी दिखाई देगी। जो आंख के सामने वाली चीज आंख को नहीं दिखाई देती है, दूर की चीज पहले दिखाई देती है, अंदर खड़ा हुआ पुजारी भगवान को नहीं दिखता है, लेकिन जूता संभालने वाला भगवान को पहले दिखता है। नथिंग इज लेस इम्पॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम पर्सनल गॉड। ये पुरानी कथा सबने सुनी होगी, हनुमान पहाड़ उठाता है और एक जो स्क्वायरल है वो दो दाने मिट्टी के सेतु रामचंद्र की बनाने का प्रयास कर रही है। हनुमान ने कहा हटो यहां से, बीच में पांव के नीचे आके मर जाएगी। बोला मैं भी सेतु बनाने में रेत डालने पर, इस रेत से कब सेतु बनेगी। पूछ के ऊपर हनुमान ने पांव दिया, पूछ थोड़ी लंबी हो गई। रोती हुई गई राम जी के पास, राम मेरे को सेवा आपके हनुमान करने नहीं देता है। कहते हैं राम जी ने ऐसे उसकी पीठ के ऊपर उंगली घुमाई, तीन निशान हो गए। फिर कहा हनुमान को क्या सजा दे, बोला उसकी भी पूंछ लंबी कर दो, मेरी लंबी कर दिया तो उसकी भी लंबी हो जाए। भगवान ने कहा तुमने अच्छा इसलिए वरदान मांगा है, इसके ऊपर जब कपड़ा डाल के बांधेंगे तब काम आएगी बड़ी वाली। लंका जलाने में बड़ी काम आएगी ना, तो डबल बेनिफिट देते हैं इसको, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और रावण का काम भी हो जाएगा। तो ये छोटी सेवा और बड़ी सेवा भगवान के लिए कोई अंतर नहीं। हनुमान को बुला के कहा फिर कि तुमको मेरी सेवा, मेरा जितनी ये कर रही है वो मुझे उतनी प्रिय है जितनी तुम कर रहे हो। तो छोटी सेवा को छोटी नहीं समझना चाहिए। और ये सेवाएं मुश्किल है सबसे, बर्तन की और ये, और जो इससे दिल से करता है वो जितना कचरा साफ होता है मंदिर की सफाई का उतनी उसकी दिल साफ होती है अंदर से। तो ऐसी सेवाएं करने से भगवान के प्रेम प्राप्त करने में बहुत आसानी होती। अब कहते हैं एक लाइन और पढ़ते हैं, समय आज का हमारे देर से आने में दिक्कत हो गई। कृष्ण माधुर्य सेवा आनंद प्राप्तिर कारण कृष्ण सेवा करे और कृष्ण रस आस्वादन। When one attains the transcendental bliss of an intimate relationship with Krishna, he renders service to him and tests the mellows of Krishna consciousness. पहले तो सेवा करनी पड़ेगी संबंध से, फिर जब उस सेवा में आनंद आने लगेगा, और करके कभी देखेंगे तभी आनंद आएगा, बगैर किए नहीं आएगा, देखने से नहीं आएगा, करेंगे तब आएगा। पुराने जमाने में लीडर उसको कहते थे जो पहले एग्जाम्पलरी होता था। राजा युद्ध में जाता था तो सेना के सबसे पहले अपने ध्वज के साथ राजा जाके लड़ता था, सैनिक पीछे लड़ते थे, उनका उत्साह होता था। ये पुराने परी पार्टी थी तो सैनिकों में डर नहीं था, हमारा राजा लड़ रहा है तो हमको क्या परवाह। ऐसे लीडरशिप प्रभुपाद जी जब वहां गए तो पाश्चात्य देश में कोई संस्कृति नहीं थी, उन्होंने पता है पहला चिट्ठी लिखी थी क्या लिखा था, These people don't know even that they have to clean after passing school. They use papers. ये पहली चिट्ठी लिखी थी कि इतने असभ्य है, उनको ये भी पता नहीं है सोच के बाद हाथ धोते हैं। ये भारत में तो सोच नहीं सकता है कोई। बोला अब ये स्थिति ये है, अब उन लोगों को बैठकर सिखाने के लिए पोचा लगाना स्वयं ने सिखाया, मंदिर साफ करना स्वयं ने अपने हाथ से करके दिखाया, रसोई घर को कैसे साफ करना है, कितना क्लीन रखना है, हर एक चीज हाथ से करके दिखाई, तब वो सीखने से पहले सीखते, उनको तो पता भी नहीं था। तो एट द एज ऑफ ओवर 70 प्रभुपाद प्रैक्टिकल डन एवरीथिंग, फ्रॉम क्लीनिंग बर्तन साफ करने से लेकर जूठे बर्तन वो खा के चले जाते थे। वो भक्त आके जूठे बर्तन खा के चले जाते थे। और एक दिन प्रभुपाद बैठे थे, ये सब धोऊंगा कैसे मैं, हे भगवान तब तक एक ऐसी आ गया कैसे घूमता हुआ, हाउ कैन आई सर्व यू, कैन आई हेल्प, भगवान ने भेज दिया, ये मत करो। लेकिन वो सेवक इस उम्र में करते थे, अभी हमारे में किसी की उम्र उतनी नहीं है, तो हमको सेवा करने का उत्साह क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि टेस्ट नहीं डिवेलप हुई। तो टेस्ट डिवेलप करनी चाहिए। ये वैसे भी कहते हैं सेवा सबको प्यारी है, काम प्रिय है चाम प्रिय नहीं है, कहावत है मालूम है, काम प्रिय है चाम प्रिय नहीं है, चाम का मतलब देखने में सुंदर चमड़ा है, ये किसी को प्रिय नहीं है, काम करोगे वो प्रिय है, कि व्हाट यू आर डूइंग दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक्टिव सेवा करना ये महत्वपूर्ण है, कितना हमारा उसमें उत्साह बढ़ता है सेवा करने में, और कितने लोगों को हम सेवा में लगा सकते हैं। स्वयं सेवा करने से भी बहुत लोगों को सेवा में लगाना उससे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है खुद कुछ भी न रहे और केवल दूसरों को आर्डर दे, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि स्वयं उदाहरण बन के करके और हजारों को लगा सके। और इसलिए हर गांव में, हर नगर में, हर पाड़े में, हर महल्ले में हमारे को ये सत्संग का माध्यम से लोगों को कृष्ण के उन्मुख करना है जो बेमुख हो गए हैं। हर जगह ये मैसेज पहुंचना है। चेतना महाप्रभु ने उस समय में हरिदास ठाकुर को, जो ब्रह्मा जी है जिसने इस संसार को बनाया है, और नित्यानंद जो बलराम जी है जो 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 गुरु को शक्ति प्रदान करने वाला तत्व है, एक सृष्टि का उत्पत्ति करने वाला और एक उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाला, उन दोनों को कहा हर एक घर में जाके ये भिक्षा मांगो। हाँ, नित्यानंद हरिदास घरे घरे जाए ये भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? उनको हाथ जोड़े बोलो कहो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, आप कृष्ण का नाम लीजिए, बस ये भिक्षा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। और हर घर के अंदर जाके उसको कहो कुछ नहीं चाहिए, कहो कृष्ण नाम, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम लो, बस इतनी भिक्षा मांगो जाके घर घर में। इसी की ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने की कि तुम्हारे कहने को शायद वो भूल जाए, उनके टाइम पास नहीं हो, उनको बोलो एक पुस्तक ले लो, ये कृष्ण आपके पास आ रहा है, ये आपको पुस्तक पुस्तक पहुंचाना है का मतलब है कृष्ण उसके हाथ में देना। तो ये भगवान का नाम जपवाना, भगवान का संदेश उन तक पहुंचाना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। ये सनातन गोस्वामी को चेतना महाप्रभु शिक्षा दे रहे, और सनातन गोस्वामी को हम सिद्धांत आचार्य मानते हैं और संबंध के आचार्य हैं। ये तीन शब्द है ना, इन शब्द तीन शब्दों के तीन आचार्य हुए। संबंध का आचार्य सनातन गोस्वामी है, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का जो जो सारी शिक्षा है, सिद्धांत है, उनको स्थापित किया है। दूसरा नाम सनातन गोस्वामी के लिए है सिद्धांत आचार्य, और उन्होंने ठाकुर जी जो स्थापन किए वृंदावन के अंदर राधा मदन मोहन, उनको कहते हैं संबंध विग्रह। संबंध विग्रह उनका दर्शन, भगवान के संबंध का दर्शन। ये ठाकुर है, गौरियों को तीन ठाकुर बहुत प्रिय है। अभिधेय के आचार्य रूप गोस्वामी है, अभिधेय तत्व सेवा का, इसलिए उनको कहते हैं रस आचार्य, सेवा में रस आता है तो उसको रस आचार्य कहते हैं, भक्ति का रस। उन्होंने लिखा एक पुस्तक है भक्ति रस अमृत सिंधु, वो रस आचार्य है। और उनके ठाकुर जी है राधा मदन, राधा गोविंद देव जी। राधा गोविंद देव जी अभिधेय के विग्रह है, और प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। और वो महाप्रभु की शिक्षा में वैराग्य के आचार्य हैं। वैराग्य, वैराग्य का कौन सा छह गोस्वामी में नाम आएगा? रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य की मूर्ति है। और उनके ठाकुर जी कौन है प्रियोजन के? राधा गोपीनाथ। जय जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा लक्ष्य। उधर क्या मिलेगा? गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये गाया है जब प्रेम से। हमारा लक्ष्य है वृंदावन, और वृंदावन में हमारा लक्ष्य क्या है? गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो इसको कभी जीवन में सफल होना है तो ठीक तरह ये समझना चाहिए। और फिर कृष्ण कृष्ण के विषय में बहुत ज्यादा महाप्रभु ने इसमें आगे बताया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप क्या है, उसका विलास विग्रह क्या है, उसका प्रकाश विग्रह क्या है, ये इतने बड़े ग्रुप का टॉपिक नहीं है, ये छोटे ग्रुप में जैसे साइंटिफिकल समझना पड़ेगा कभी बैठकर, तो समय होगा तो कभी चर्चा करेंगे। आज यहाँ कथा को विराम देते हैं, लेकिन ये प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण को भूलो मत, और अगर आप उनको याद कर रहे हो तो आगे सेवा में अपने आप को हृदय में सेवा करने का अपने आप नहीं आएगी, पहले आदत डालनी पड़ेगी फिर नेचर बनेगा, आदत डालेंगे तब नेचर बनेगा, और फिर नहीं करेंगे तो सुख नहीं आएगा, फिर वो सेवा छोड़ना नहीं चाहेंगे, उसमें अटैचमेंट हो जाएगी सेवा में, और कैसी किसी सेवा में अटैचमेंट हो जाएगी वही हमारा बाद में स्वरूप हो जाएगा। तो सेवा के लिए अपने आप को आस्ते आस्ते तैयार होना चाहिए। किसी की सेवा रोज सब करते हो नहीं करते हो ऐसा बात नहीं है, सेवा करना सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करना सिखाने की जरूरत है। दूसरों की सेवा तो हम रोज कर ही रहे हैं, भगवान की सेवा सिखाने की जरूरत है। तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की, श्री गौरंग महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे। बेसिकली चेतना चरित में पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, ये तो डॉक्टरेट का पुस्तक है, ग्रेजुएट की भगवत गीता है, पोस्ट ग्रेजुएट भागवत है, और डी लिट की है ये, तो हम ऊपर से शुरू कर दिया, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगली बार कभी भगवत